الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذريته وأهله وأتباعه وأتباع سنته الكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربكم للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يحلف فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال للمسلمين اعلم ما لا تعلمون صدق الله مولانا العظيم.
Yeah, भी इस और शैतान कभी फरिश्ता ही रहा, फरिश्तों के साथ रहा, फरिश्ता नहीं था, सिग्नाथ कैसे रहा। और जो फरिश्ते सिग्नाथों को भगाने के लिए आए उनके साथ भी आसमान के ऊपर चला गया। जब पूरी जमीन सिग्नाथों से पाप हो गए तब जाकर अल्लाह भगवान को बताया है इस इंसान को पैदा करने का इरादा कर रहा है। ये इंसान की एक बहुत बड़ी शराफत है और इंसान का एक बहुत बड़ा मर्तबा है कि अल्लाह ने जब इंसान को पैदा करने का इरादा फरमाया तो पहले जिन्नातों के जमीन को साफ कर दिया, जिन्नातों के बगैर जमीन को खाली करवा दिया, उसके बाद अल्लाह हमारा ने इंसान को पैदा किया। जैसे कि हमारे घर के अंदर जो मेहमान आने वाला होता है तो पहले हम झाड़ू वाड़ू देकर के घर को साफ कर लेते, उसके बाद घर के अंदर मेहमान आ गए। ऐसा नहीं होता कि पहले मेहमान आ रहा है बाद में झाड़ू दे, ऐसा नहीं होता। पहले झाड़ू दे देते हैं, सफाई हो जाती, उसके बाद मेहमान आ गए। तो ये इंसान के लिए शराफत की बात है कि अल्लाह ने जिन्नातों की जमीन को साफ कर दिया। जब जमीन साफ हो गई तो अल्लाह ताला इंसान को पैदा करने का इरादा किया। जब अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा करने का इरादा फरमाया तो कुरान में अल्लाह ताला ये इरशाद फरमा दिया कभी जवाब और को भाई नारा इशारी अल्लाह ने अपने सारे वरिष्ठों को जमा करवाया और जमा करने के बाद अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं जमीन के अंदर अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। अल्लाह ताला फरमाए फरिश्तों से फरमाए ये मेरे फरिश्तों मैं जमीन के अंदर अपना खलीफा बना रहा हूँ। अभी खलीफा की रस्ती होती है, खलीफा का एक माना आता है नाइफ का मतलब जो होता है कि ये इंसान दुनिया में आकर के अल्लाह के हुक्मों को दुनिया में चलाएगा, अल्लाह के अहकाम को दुनिया में चलाएगा। हुक्म तो अल्लाह के होंगे लेकिन चलाना भी इस इंसान का काम होगा। और नाई किसी को कहते हैं कलेक्टर साहब ने हुक्म दिया है वो भी कलेक्टर उनको चलाते हैं। तो ये इंसान अल्लाह का खलीफा है यानी अल्लाह के हुक्म भेजते हैं, उस हुक्म को ये इंसान दुनिया के अंदर चलाता है। ये खलीफा का एक माना हुआ है नाई अल्लाह का नाई जो जमीन पर अल्लाह के अहकाम को चलाए। माना खलीफा का होता है पीछे आने वाला, इसके बाद जो आए उसको भी खलीफा दे रहे हैं क्योंकि इंसान जिन्नात के बाद दुनिया में आया है, जिन्नात चले गए फिर इंसान आया है, इसीलिए भी इंसान को खलीफा कहा जाता है। और इसी वजह यह है कि इंसान क्योंकि एक इंसान के पीछे दूसरा इंसान, दूसरे के पीछे तीसरा इंसान, तीसरे के पीछे चौथा इंसान दुनिया में लगातार शरीर बराबर है। इसके लिए एक के पीछे एक के पीछे एक आ रहे हैं, इसीलिए अल्लाह ने फरमाया कि मैं जमीन के अंदर अपना खलीफा बना रहा हूँ। इनमें आयु के बराबर खलीफा ये अल्लाह ने वरिष्ठों के सामने फरमाया कि मैं जमीन पर अपना एक नाई बना रहा हूँ, अपना एक खलीफा बना रहा हूँ। यहाँ एक सवाल भी पैदा होता है कि अल्लाह ताला को फरिश्तों को कहने की क्या जरूरत है? अल्लाह तो हाकिम है, अल्लाह कादिर है, अल्लाह कुदरत वाले हैं, फरिश्तों को कहने की क्या जरूरत है? फरिश्तों को कहे बिगैर भी अल्लाह ताला पैदा कर सकते हैं, फरिश्तों को पकड़े भी कर सकते और सीधे अल्लाह ताला इंसान को पैदा कर सकते कि बदला के फरिश्तों को देखो है। लेकिन अल्लाह ने पहले फरिश्तों के सामने बात اور پھر انسان کو اللہ نے پیدا کیا. یہ سوال ہے کہ اللہ کو کیا ضرورت تھی شاید کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ میں یہ پیدا کرنا چاہتا ہوں. جو باتیں اس کے لیے رہن کیا کر رہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ حلیم ہے, جاننے والے ہیں. اللہ حکیم ہے, خبر رکھنے والے ہیں, اس کو سب معلوم ہے. لیکن اللہ نے جو فرشتوں کو یہ کہا کہ میں اپنا حقیقہ بنانے والا ہوں, یہ مشورے کے طور پر ہے اور اللہ کو مشورے کی ضرورت ہے. لیکن اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر مشورے کی سنت کو چالو کرنا چاہتے ہیں. یہ میرے بچوں, جب میں تمہارا جاننے والا علیم حبیب خدا فرشتوں سے مشورہ کرتا ہوں, فرشتوں کے سامنے مشورہ کرتا ہوں, تو تم کو میں ضرور مشورہ کرتا ہوں. شری حدیث شریف میں آتا ہے لا نظیم و منیش پشاو, جو مشورہ کر کے کام کرے اس کو کبھی پچھتانا نہیں پڑتا ہے, اس کو کبھی پریشان نہیں ہونا پڑتا ہے. اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے ماں خواب اور منیش صفاو, جو آدمی استخارہ کر کے کام کرتا ہے اس کو کبھی نقصان نہیں ہوتا ہے. اسی لیے ہمیں معلوم ہوا کہ ہمیں کوئی بھی کام کرنا ہو تو اپنے بڑوں سے مشورہ کرو یا اللہ کے سامنے استخارہ کرو اور اس کے بعد اپنا کام چالو کرو, تو انشاءاللہ نہ نقصان ہوگا نہ دھوکا ہوگا. حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالن علی رحمۃ اللہ کی سلام سے میں نے اپنی کتابوں سے سنا, اتنے بڑے آدمی نہیں مولانا محمد عمر صاحب رحمۃ اللہ ہے, لیکن فرماتے تھے کہ میں اپنے گھریلو معاملے میں حضرت کی رحمۃ اللہ سے مشورہ لیتا ہوں. اتنے بڑے آدمی تو ہمیں بھی مشورے سے کام کرنا چاہیے, استخارے سے کام کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے سامنے جو یہ کہا کہ میں زمین کے اندر ایک مخلوق بنا رہا ہوں, اپنا نائی بنا رہا ہوں, تو اس میں مشورے کی ایک شکل تھی تاکہ انسان مشورہ کرنا سیکھ جائے اور انسانوں کے اندر مشورے کی سنت چالو ہو جائے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا. دوسری بات یہ بھی ہے کہ انسان کے پیدا ہونے سے پہلے فرشتوں جو کہ دنیا میں آخرت ہے آسمانوں میں, وہ اپنے آپ کو دیکھتے کہ ہم تو بڑے دیش ہیں, ہم تو بڑے اچھے ہیں, ہم تو اللہ کے بڑے مددگار ہیں, اور یہ جتنا بڑے طوفانی ہیں بڑے برسادی ہیں. تو فرشتے یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بعد کوئی عزت والی اور کوئی علم والی کی مخلوق اب نہیں بنائیں گے. فرشتے یہ سمجھتے تھے کہ سب سے زیادہ عزت والے ہم ہی ہیں, سب سے زیادہ علم والے ہم ہیں, سب سے زیادہ اخلاق والے ہم ہیں. ہم سے بڑا کوئی اخلاق والا, ہم سے بڑا کوئی عزت والا, ہم سے بڑا علم والا اللہ کے یہاں اب کوئی پیدا ہونے والا نہیں. فرشتے یہ سمجھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ میرے فرشتوں تم لوگ خیال میں مت رہنا, میں تم سے اچھی ایک مخلوق کو بنا رہا ہوں, تم سے زیادہ مرتبے والی ایک مخلوق کو بنا رہا ہوں, تم سے زیادہ عزت اور علم اور دکھائی تھا. یہ فرشتوں نے زمین کے اندر اپنا نائی بنا رہا ہوں. فرشتوں نے سنا زیادہ والا زمین کے اندر اپنا خلیفہ بنا رہے ہیں, نائی بنا رہے ہیں. تو فرشتوں نے شور بتایا کیا کہا فرشتوں نے, فرشتے کہنے لگے اے اللہ اس زمین کے اندر ایسی قوم کو پیدا کرے گا, ایسی مخلوق کو زمین میں بنائے گا جو زمین میں جا کر کے فساد کرے, جو زمین میں جا کر کے آپس میں مار ماری کرے, جو زمین کے اوپر جا کر کے آپس میں لڑائی جھگڑے کرے. वो जमीन के ऊपर जाकर के एक दूसरे का खून बहाव है। पहला ऐसी मखलूक को जमीन में लगाएंगे और ऐसी मखलूक को आप जमीन में पैदा करेंगे, फरिश्तों ने अल्लाह से कहा। और ये जो आयत करीमा में लग से बता रहा है कि अल्लाह आप ऐसी फसाद करने वाली मखलूक इंसान को जमीन से पैदा कर रहे हो, तो फसाद का एक माना अकीम खानी रहमतुल्लाह ने बड़ा अजीब और गरीब बयान किया। फरमाते हैं कि आयत में फसाद का माना यह है कि अल्लाह तो जमीन में ऐसी मखलूक बनाएगा जो जमीन पर जाकर के जोर जोर का काम करे, तरकीब और तहवील का काम करे। यानी इसको जरा समझो, जैसे मिसाल के तौर पर पहले आठ पंखे होते हैं, तो आठ पंखा कैसे बना? तो खजूर के दरख्त के ऊपर किसी ने दाली काटी, उसके पत्ते निकाले, फिर उसको तैयार किया, सीधा किया, उसमें छज्जे लगाए और लगा करके उसमें से पंखा बनाया। अब आठ पंखा जो बनाया जितना मटीरियल इसमें इस्तेमाल किया वो तो दरख्त पर लगता है। हमने क्या किया, काट करके उसको इधर से इधर छोड़ा, उधर का इधर छोड़ा, इधर का इधर लगाया, इतना काम हमने किया। अब ये पंखा है, पंखे में हमने क्या किया भाई, लोखंड और स्टील तो अल्लाह ने बनाया है, हमने जमीन में से लोखंड निकाला, उसको पिघाल करके पंखा करके इसकी पंखे बनाए, एक मोटर बनाई और पंखा लटका दिया। एरोप्लेन हवा के अंदर उड़ते हैं, इंसान ने कोई कमाल नहीं किया, जमीन के अंदर से स्टील निकाला, उसको तोड़ तोड़ करके परिंदे की शक्ल बनाए, उसमें पेट्रोल डाला, उसको हवा के अंदर उड़ा दिया। इंसान क्या करता है, बनाता नहीं है बल्कि तोड़ तोड़ का काम करता है, इधर का लगाया उधर इधर का लगाया, और फिर कह देता है कि ये मेरी बनाई हुई चीज है, ये मेरी पैदा की हुई चीज है। तो फसाद का माना अनिल खानी रहमतुल्लाह ने बताया कि इंसान दुनिया के अंदर जाकर के तरकीब और तहरीर का काम करेगा, तोड़ जोड़ का काम करेगा, जल चीजों को जोड़ करके नई चीज बनाने के काम करेगा। ऐसा ऐसी फसादी मौजूदों को जमीन में पैदा करे, जो खून बहाए, जो कतल करे, जो पसाब करे जमीन में, ऐसा ऐसों को पैदा करे। ये फरिश्ते ने क्या किया, बना मुसबे हो गए हम जी का सब मुश्किल है, अब रात दिन तेरी तस्वीर करते हैं, ऐसा हम रात दिन तेरी पाकी बयान करते हैं। क्या मतलब हुआ उसका, इसका मतलब ये था कि अल्लाह हम तेरी फरमा बरदार मखलूक है, अल्लाह हम तेरी मानने वाली मखलूक है, अल्लाह हम तेरी तस्बीह पढ़ने वाली मखलूक है। फरिश्तों की हिम्मत नहीं हुई कि वो डायरेक्ट अल्लाह को यूं कहे कि अल्लाह हबीबा हमको बता दे, ये हिम्मत फरिश्ते ने नहीं हुई, ये फरिश्तों ने इनडायरेक्ट कहा। इनडायरेक्ट जैसे कि हमारे यहाँ कोई मेहमान आते हैं, अब दूसरे में दो ढाई बजे मेहमान आए, अब उसकी हिम्मत ये नहीं होती कि आपको यूं कहे कि मैं भूखा हूँ, खाना बाकी है, तो आप वो क्या करेंगे कि बात जाने दो, मैं तो 12 बजे पहुंचने वाला था, 9 बजे का बस स्टॉप पर आकर खड़ा था, लेकिन बस ही नहीं मिली, 9 बजे से बस स्टॉप पर खड़ा, एक बस गई दूसरी गई दूसरी गई, यहाँ तक के 12 बजे बस मुश्किल से जगह मिली तो 2 बजे यहाँ पहुंचा। क्या मतलब हुआ कि 9 बजे से घर से निकले हुए हैं, सोचे इनके लिए निकले का इंतजार हुआ, उन्होंने इन डायरेक्ट की। तो फरिश्तों में इतनी हिम्मत नहीं हुई तो वो डायरेक्ट अल्लाह को ये कहने के अल्लाह खलीफा हमको बना दो, इतनी हिम्मत नहीं हुई तो फरिश्तों ने इन डायरेक्ट कहा था, ए अल्लाह हम तेरी तस्वीर पढ़ते हैं, ए अल्लाह हम तेरी काफी बयान करते हैं, ए अल्लाह हम तेरी फरमा बरदार मखलूक है, ए अल्लाह हम तेरी बात को मानते हैं। मतलब क्या, ऐसा खलीफा हमको बना दे, ये मतलब था, लेकिन डायरेक्ट नहीं कह सकी, वरना हमें सबसे होते हम की कलर सबकी सेवा। अब यहाँ एक बात ये सोचने की है कि ये इंसान दुनिया में आने के बाद फसाद करेगा, खून बहाएगा, आपस के अंदर लड़ाई झगड़े करेगा और जमीन के ऊपर खूब कितने करेगा, ये फरिश्तों को कैसे पता, अभी तो इंसान पैदा भी नहीं हुआ और इसको तो पता कैसे चला कि इतना दुनिया में आप ये सारे धंधे रहेगा। तो हजरत मुफस्सिरीन ने उसकी दो तीन वजह लिखी है। एक बात तो ये कि फरिश्तों ने अल्लाह को इंसान का फ्यूचर और भविष्य मुस्तकबिल पूछ लिया।